सज्जनों, तो हमने इस हफ्ते जनवरी 26 उसको रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत आजाद हुआ 1947 अगस्त 15 को, पर देश कैसे चलेगा, किस तरह के गवर्नमेंट होगा, कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली जब से लागू किया गया 1950 जनवरी 26 से, हम रिपब्लिक कंट्री के रूप में, गणतंत्र देश के रूप में ऑफिशियली जाने लगे और इसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तो होना कि हमें आजाद हुए, फ्रीडम मिली, इंडिपेंडेंसी मिली, पर उस इंडिपेंडेंसी को बचा के रखना बड़ी बात होती है। संस्कृत में कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, गीता में कृष्ण कहते हैं। योग मतलब जो हमारे पास नहीं है, व्यक्ति जीवन में जो कुछ करता है दो चीजों के लिए, जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड योग, और क्षेम जो हमारे पास है उसको बचा के रखना, उसको संभाल के रखना, उसको कहते हैं क्षेम। तो जब हम गुलाम थे तो हमारी कोशिश थी कि हम आजाद बने, स्वाधीन बने, स्वतंत्र बने, पर जो स्वातंत्र मिला तो स्वातंत्र को कैसे हम बचा के रखें, ऐसा कौन सा गवर्नेंस लाएं कि हमारा देश ज्यादा अच्छा हो सके, तो हमने जो भी रास्ता चुना अपने संविधान के द्वारा ऑफिशियली, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 26 को रिपब्लिक डे के रूप। देवियों सज्जनों, इंसान की आत्मा का ऐश्वर्य, उसकी प्रॉस्पेरिटी को पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें व्यक्ति को फिजिकली देखना पड़ता है कि वो फिजिकली कैसा है, कितना हेल्दी है फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली। उसकी बाहरी चीजों से हम अनुमान लगाते हैं कि वो अंदर कितना समृद्ध होगा, कितना प्रॉस्पर होगा। बाहर का मतलब हम बाहर के घर से, पैसे से, बैंक बैलेंस से नहीं, व्यक्ति की ओवरऑल पर्सनालिटी से पता लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि अंदर वो कितना मजबूत है। इसी तरह जब आत्म समुदाय हो, जब ग्रुप ऑफ सोल्स हो, बहुत सारे आत्माएं हो, उन सभी आत्माओं की अच्छाइयां बुराइयां को समझने के लिए जिस शरीर की, समुदाय की हम कल्पना करते हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं, नेशन कहते हैं, स्टेट कहते हैं। ये जो नेशन है, जो राष्ट्र है, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, एक इमोशनल चीज है। ऐसा कोई पीस ऑफ लैंड को आप अगर देश समझते हैं, तो ऐसे देश के प्रति कोई भावना बनने की कोई मतलब नहीं होती है। ये बड़ा डिफिकल्ट है कि राष्ट्र को, नेशन को डिफाइन करना, पर यह पक्का है कि कोई भी जमीन का टुकड़ा राष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र का मतलब उस देश में रहने वाले लोग, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी समझ, उन सबकी जो टोटलिटी है, उसे हम राष्ट्र के रूप में समझते हैं। कोई भी संस्था, इवन आपका घर हो या छोटे से आर्य समाज मंदिर हो, कोई भी कम्युनिटी हो, अकेले व्यक्ति से नहीं चलता, या सिर्फ उसके ऑफिशियल मेंबरों से भी नहीं चलता, बहुत सारे लोगों का डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, नोइंगली, अननोइंगली, कंट्रीब्यूशन होता है तभी एक संस्था कोई भी चीज स्मूथली चलता है। बहुत सारे लोगों के अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। सामने कुछ लोग होते हैं जो दिखते हैं हम जैसे लोग, पर बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं तभी स्मूथली एक संस्था चलती है। इसी तरह देश सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होता, वो तो सामने दिखने वाला देश का फेस है। उस देश के रहने वाला हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से देश को कमजोर करता है या मजबूत करता है। जैसे देश के रहने वाले लोगों की एटीट्यूड होता है, पर्सनालिटी होता है, सोच होता है, समझ होता है, उससे हम अंदाज लगाते हैं कि देश कैसा है, या देश को देखकर समझ जाते हैं वहां के रहने वाले लोग कैसे हैं। प्राचीन काल में, आज हम संदर्भ में इस रिपब्लिक डे के संदर्भ में वेदों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे हजार हजार साल पहले भी पुराने समय में भी हमारे ऋषि मुनियों की क्या कल्पना थी राष्ट्र की, देश के बारे में। तो कहते हैं राष्ट्र बना कैसे, तो वेद के ऋषि कहते हैं भद्रम इच्छन्त ऋषय सर्विदस्तपो दीक्षाम उपनिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तो। अथर्वेद का मंत्र है। कहते लोक कल्याण की इच्छा से उस सुख के रहस्य को जानने के लिए, टू नो द सीक्रेसी ऑफ हैप्पीनेस, ऋषि होने, ऋषि मतलब जो सत्य को खोज करते हैं, सत्यान्वेषी हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ऐसे ऋषियों ने तप किया, साधना की, और उस साधना के बल से जो उन्होंने जाना, जो उन्होंने पाया, वो था कि राष्ट्र बल ओज, ये तीनों से व्यक्तियों का सुख छुपा हुआ है। कोई इंडिविजुअली आप सुखी नहीं रह सकते, आप कितने भी हार्ड वर्किंग हैं, कितने भी आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड हैं, आप कितने अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, वो मायने नहीं रखेगा आपके सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, अगर आप एक सही एटमोस्फियर में, एक सही नेबरहुड में नहीं है। आपकी अपनी छोटी सी नेबरहुड कम्युनिटी होती है, जब पूरा का पूरा बहुत बड़े एरिया के सारे कम्युनिटी को जोड़ देते हैं तो हम उसको देश कहते हैं। तो देश बनता है इसी से, तपस्या से, साधना से बनती है, बनता है। दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री है जहां हर दुनिया का आदमी जाना चाहता है, वो यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या एशिया में जापान हो, साउथ कोरिया हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, जो भी समृद्ध हुए हैं, उन सब में एक बेसिक चीज है जो सब में कॉमन है, और वो ये है, अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं जिस राष्ट्र की को बनाने के पीछे ऋषियों की जो चिंतन था कि लोगों को उससे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, उस राष्ट्र को बनाए रखने के लिए 7-8 चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस कम्युनिटी में ये 8-7-8 चीजें होती है वो समृद्ध कहलाते हैं, सुखी देश कहलाते हैं। जहां इनमें से एक भी कम है, दो भी कम है, चार भी कम है, पांच भी कम है, वो इन्फीरियर रह जाते हैं। सत्यम बृहद्रुतम उग्रम दीक्षा तपो यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुम लोकम पृथ्वी न कृणोतु। अथर्वेद का 12वां कांड है, उसका पहला सूक्त है, अगर मौका मिले तो जरूर पढ़िए। नाम है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी का मतलब अर्थ के नहीं, प्लैनेट के बारे में नहीं, मातृभूमि के बारे में है, जिसको हम मदरलैंड कहते हैं। एक मातृभूमि की एक परिकल्पना है, उसको समझने के लिए कहा गया है। उसका पहला श्लोक, पहला मंत्र है कि कोई भी जो देश है वो कैसे सस्टेन करता है, उसको बताने के लिए कहते हैं कि जिस देश के लोग सत्य को मानते हो, पालते हो, आचरण में लाते हो, पहला शर्त है किसी देश को सस्टेन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि वहां सच्चाई कितनी। जब आप सच्चाई कहते हैं, ऑनेस्टी कहते हैं, नेचुरली वहां कितना कम करप्शन है, कितनी कम डिसऑनेस्टी है, कितना ज्यादा ऑनेस्टी है लोगों के बीच, आप अपने आप काउंट करिए, कैलकुलेट करिए। कोई भी देश जिसको आप मानते हैं कि बड़ा अच्छा देश है, जहां जाने के लिए हर आदमी तरसता है, उस देश के बैकग्राउंड में देखेंगे, उसकी पब्लिक सेंटिमेंट में देखेंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा वो मिलेगी ऑनेस्टी। कोई भी देश अपने आप में समृद्ध नहीं हो सकता जिस देश में की लोगों में ऑनेस्टी कम हो। जितनी ऑनेस्टी ज्यादा होगी, देश अपने आप प्रॉस्पर होता है। देवियों सज्जनों, दुश्मन देशों की हाय हाय करने से, अपने देश की जय जय गान करने से कोई देशभक्त नहीं होता। देशभक्ति होती है कि मैं जहां भी हूं, जैसी भी स्थिति में हूं, मैं अपने कामों के प्रति कितना ऑनेस्ट हूं, अपने ड्यूटी के साथ कितना ऑनेस्ट हूं, मैं अपनी मेरे मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने में मैं कितना ऑनेस्ट, उससे देश की प्रॉस्पेरिटी का साइन मिलता है, देश की समृद्धि का पहचान उससे मिलता है। अगर मेरे देश के बच्चे, स्कूल के बच्चे नकल करते हो, पढ़ाई ना करते हो, तो मैं एक ऐसा मेरा एक ऐसा देश बनेगा जहां के ज्यादातर बच्चे डिग्री लेकर तो घूमते हैं पर अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। जिस देश के बच्चे, स्कूल के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे भी ऑनेस्टी के साथ अपनी पढ़ाई करते तो वो देश ऑनेस्ट होता है, वहां पढ़े लिखे लोग होते हैं। देश अपने आप में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके रहने वाले लोग जैसा बनाते हैं वैसा बनता है। कोई गवर्नमेंट देश नहीं बनाता है, गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हमारे ही लोग होते हैं। अगर हमारे अंदर डिसऑनेस्टी हो, जो लीडर हमें लीड करेगा वो डिसऑनेस्ट मिलेगा। हमारे भारत में एक ये एक तरह की ये ट्रेडिशन बना है, हम नेताओं को गाली देते हैं, करप्ट है, करप्ट है, पर इलेक्ट करने वाले कौन होते हैं? कोई अमेरिकन जाकर तो इलेक्ट नहीं करते उनको, कोई ऑस्ट्रेलियन वाले तो इलेक्ट नहीं करते, देश के आम जनता चुनते। इसका मतलब नेता करप्ट नहीं है, आदमी लोग करप्ट हैं, इसीलिए करप्ट लोगों को चुनते हैं। तो जो करप्ट आदमी नेता बनता है तो फिर हमें उसका हिस्सेदारी नहीं मिलता है, तो हम तिल मिलाते। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कोई नेता करप्ट नहीं होता है, सोसाइटी करप्ट होता है तो नेता भी करप्ट होगा, डॉक्टर भी करप्ट होगा। अगर सोसाइटी अच्छी हो, समाज अच्छा हो, तो उसका नेता भी अच्छा होगा, उसके डॉक्टर भी अच्छा होगा, उसका इंजीनियर भी अच्छा होगा, उसका टीचर भी अच्छा होगा, उसके स्टूडेंट्स भी अच्छे होंगे, उसके क्लीनर भी अच्छा होगा। इसीलिए ये नहीं है कि कोई नेता करप्ट है। अगर कोई देश करप्ट है, उसका हर हर पार्ट करप्ट है। अगर कोई देश अच्छा है, उसकी हर पार्ट में अच्छाइयां है, वो छोटा सा पार्ट हो या बड़ी। वो नेता एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, आम आदमी, छोटे मोटे लोग छोटे छोटे पार्ट होते हैं। इसीलिए ये गलत धारणा है कि नेता करप्ट होते हैं। नेता करप्ट होता है क्योंकि पब्लिक को पसंद आती है, तभी तो चुनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, तुम्हारा देश तुमसे अलग नहीं है, तुम ही देश हो। तुम जब सोचो कि मेरे बैठने से देश बैठता है, मेरे जगने से देश जगता है, मेरे उठने से देश उठता है, उस दिन देश को जैसा मोड़ोगे वैसा बन जाएगा। देश कोई अलग चीज, मैं अलग चीज, ऐसा नहीं होता है। ऋग्वेद का मंत्र है, अहम राष्ट्री संगमनी वसुना, आई माई सेल्फ द नेशन, मैं ही नेशन हूं, राष्ट्र हूं। मैं अगर दौड़ता हूं तो मेरा देश दौड़ता है, मैं अगर ज्ञानी हूं तो मेरा देश ज्ञानी होता है, मैं अगर मूर्ख हूं तो मेरा देश भी मूर्ख होता है, मैं अगर ऑनेस्ट हूं तो मेरा देश भी ऑनेस्ट होता है, मैं खुद डिसऑनेस्ट हूं और एक्सपेक्ट करो कि ऐसा देश ऑनेस्ट हो, ये हो ही नहीं सकता। देवियों सज्जनों, मैं खुद क्यों मैं लाइन में ना लगूं और ये एक्सपेक्ट करो कि हर कोई लाइन में चले, ये नहीं हो सकता ना। और मैं ढूंढता रहूं कौन सा क्लर्क बिकने को तैयार है, 100 रुपए दे करके लाइन तोड़ के काम करा दूं, और अगर कहीं कोई क्लर्क बिका नहीं, लंबी लाइन लगी हुई है, दूसरे दो चार लोग लाइन तोड़ते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। तो देवियों सज्जनों, हमारे से हमारा देश होता है, देश से हम नहीं होते। हम जैसा होते हैं देश वैसा रिफ्लेक्ट करता है, देश हमारा रिफ्लेक्शन होता है। पहले भी मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, बहुत पुरानी सच्ची घटना है, टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्र में एक बार छपा था। किसी इंजीनियर ने अपनी आप बीती छापी थी बड़े हिम्मत के साथ। वो जापान में पढ़ने के लिए गया था, पुरानी बात है, आज से 40-45 साल पुरानी बात है, और पढ़ते समय वहां एक जापान की लड़की से उसका प्यार हुआ, और वो बाद में वहां जॉब भी करने लगा लड़का। बहुत सालों के बाद अचानक एक दिन उसको पत्र मिला कि उसकी मां बहुत बीमार है और उसको अचानक वापस आना है इंडिया। दिन का समय था, ऑफिस का टाइम था, तो उसने अपने गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा कि मुझे इतने बजे फ्लाइट है, आप मुझे एयरपोर्ट पर सी अप करने आओ। लड़की ने बोला कि मेरा ऑफिस टाइम है, मैं उस समय आ नहीं सकती हूं, पर मैं तुम्हें यहीं से सी अप कर देती हूं, फोन पर ही, मैं आ नहीं सकती। लड़के ने बोला, देखो ये तो कोई, अब भारत में तो अगर 30-40 साल पहले की यंग लड़कों की जो रोमांस की जो 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 परिकल्पना है वो एक अलग टाइप की, फिल्मों से बड़े प्रभावित होते थे, देश बेचने को तैयार हो तुम्हारे लिए, तो ये तो तुम है कि ऑफिस में 2-4 घंटे छुट्टी लेके नहीं आ सकते हो, और कहते हो प्यार करती हो। तो खूब उसने उसको फोर्स किया, लड़की मजबूरन आई एयरपोर्ट पर सी अप किया, करते समय एक चिट्ठी उसको पकड़ा दी, बोले उसको प्लेन में बैठ के पढ़ना। लड़का प्लेन में बैठ के चिट्ठी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं, पर प्यार के कारण आपने मुझे आज मेरे देश के साथ गद्दारी करवाई। गद्दारी देवियों सज्जनों क्या थी? ऑफिस से सिर्फ 2-4 घंटे की छुट्टी, पर उसको लगा तुमने मेरे से अपने देश के प्रति गद्दारी कराई, और ये मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मैं आशा करती हूं कि तुम्हारी मां ठीक होगी, पर वापस आओ मैं नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि मैं आगे ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं कर सकती अपने देश को। किसी भारतीय व्यक्ति के लिए बड़ी अजीब बात है, 10 से 5 की ऑफिस में, जो 10 बजे की ऑफिस को वैसे ही 10:30 बजे 11 बजे पहुंचता हो, 2 से 3 के लंच टाइम में जो वैसे ही 4 बजे तक लंच वापस करके आता हो, 5 बजे छुट्टी होने से पहले ही ऑफिस 4 बजे तक ऑफिस में आधे खाली हो जाते हो, उस व्यक्ति को क्या कैसे समझ में आएगा कि 4 घंटे ऑफिस में न जाने से गद्दारी होती है? उसको समझ में नहीं आता। पर अगर आप जापान भी भारत के बाद या उसके आसपास आजाद हुआ और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का देश है, जहां हमेशा भूकंप होता है, कोई भारत की तरह बहुत उपजाऊ जमीन वाला देश नहीं है, उसके बावजूद भी जापान अपने छोटे से समय में दुनिया में सबसे समृद्ध देशों में एक माना जाने लगा, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी माने जाने लगे। उसका कारण यही है कि उसके हर व्यक्ति के अंदर वो जो भाव है कि मैं जैसा भी हूं, मेरे से मेरा देश रिफ्लेक्ट होता है, मेरे से मेरा देश इन्फ्लुएंस्ड होता है, मेरा हर काम देश के लिए होता है, मैं एक छोटा सा क्लर्क हूं, मैं एक चपरासी हूं, मैं सफाई करता हूं, मैं टीचर हूं, मैं प्रीस्ट हूं, मैं जहां भी जिस भी लेवल पर हूं, मैं अपने काम के साथ ऑनेस्टी रखूं तो वो देश की उन्नति होती है, अगर मैं अपने काम के साथ डिसऑनेस्ट हूं तो मेरे देश के लिए नुकसान होता है। ये भाव जो उन लोगों के अंदर आया, वो भाव उस देश को महान बनाता है। जिस देश में ये भाव नहीं आ पाता, बच्चे अगर स्कूल में ठीक से पढ़ते नहीं है, टीचर अगर बच्चों को पढ़ाता नहीं है, सरकारी ऑफिसर्स अगर काम ढंग से करते नहीं है, डॉक्टर अगर लोगों की इलाज ठीक से करता नहीं है, साइंटिस्ट अगर ठीक से रिसर्च करता नहीं है, फिर कहे कि मैं इस देश का भक्त हूं, असंभव है, कोई नहीं सकता। झंडा पकड़ लेने से कोई देश महान नहीं होता। अगर मैं बेईमान हूं तो कैसा मेरे देश ईमानदार होगा? देवियों सज्जनों, अगर मैं कामचोर हूं, मेरा देश कैसे कर्मठ होगा? देवियों सज्जनों, वो तो वैसे ही है कि बाकी सारे लोग महान अच्छे हैं तो मेरे एक बुरा बन जाने से क्या हो जाता? ऐसा नहीं होता। इसीलिए वेद कहता है अहम राष्ट्री संगमनि वसुनाम, मैं खुद राष्ट्र हूं, अपने आप को राष्ट्र का एक टुकड़ा समझो, राष्ट्र के एक पार्ट समझो, तुम जैसा बिहेव करते हो तुम्हारा राष्ट्र भी वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, हम सब भारत से आए हुए हैं, यूएसए में भी हम भारतीय हैं, भारत से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी भारत के लोग हैं, ब्रिटेन में भी है, बाकी देशों में भी, अरब में भी है। आपको पता है अलग अलग देशों में भारतीयों की छवि अलग अलग है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी, उनकी बड़ी अच्छी छवि है, बड़ा रेस्पेक्ट है मेन स्ट्रीम में, अमेरिकन सोसाइटी में। क्यों? क्या एक्चुअली भारत के लोग वैसे ही होते हैं जैसा अमेरिका में इंडियन लोग रहते? सारे पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड, बहुत रिच हैं, प्रॉस्पर हैं, बहुत सिविलाइज्ड हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं। क्या असली भारत में ऐसे ही सब है? नहीं है। पर जो आपने छवि बनाई वो आपके देश की उस छवि को रिप्रेजेंट करता है। जो भारत गया नहीं है और आप लोगों से मिला है, उसके सामने भारत एक अलग छवि वाला देश है। अरब में जाइए, वहां भी लाखों करोड़ों में इंडियंस रहते हैं, वहां दूसरी तरह की छवि, बड़े ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि ज्यादातर वर्कर क्लास वहां जाते हैं। मतलब मेरे देश की छवि मेरे से जुड़ा हुआ है, न कि देश से मेरी छवि बनती है। अगर देश के कारण आपकी छवि है तो आप एक्सप्लोइट करते हो किसी की इमेज को, पर आपके कारण अगर देश की छवि है तो आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसलिए कहा, कोई भी देश जो बनता है उस सत्य से, उसमें ऑनेस्टी हो, बृहत हो, जहाँ हार्डवर्किंग हो, रितम हो, जहाँ इटर्नल ट्रूथ हो, उग्रम हो, जहाँ आपके संकल्प में वो दृढ़ता हो, दीक्षा, जहाँ आपकी व्रत हो, जहाँ आपका डिटर्मिनेशन हो लोगों की, तप, जहाँ लोग द्वंद्व सहनम, तप, कष्ट सहने की जिनकी आदत हो, जो कष्ट सह सकते हो, ब्रह्म ज्ञान, जिनके अंदर ज्ञान पाने की, ज्ञान बांटने की क्षमता हो, और यज्ञ। यज्ञ का अर्थ कम्युनिटी, कम्युनल सर्विस, एक दूसरे को प्रति अपने अपने आप को त्याग करने की भावना, एक बड़े कम्युनिटी के लिए इंडिविजुअल स्वार्थ को त्यागने की जो भावना, वो यज्ञ है। और ये सारी चीजें मिलके एक देश को देश बनाते हैं। इनमें से एक भी चीज में कमी आ जाए तो देश देश नहीं रहता, देवियों सज्जनों। और देश के बड़ा एक सुंदर वर्णन अथर्ववेद में करते हैं। आजकल बड़ा विवाद चलता है, यूएसए में भी काफी पॉलिटिकल टर्मोइल आया हुआ है, आजकल बड़े सारे नई नई चेंजेस होते हैं। ये मंत्र देखिएगा, आपको शायद कुछ रास्ता मिले। जन्म विभ्रति बहुधा विवाह चसम, नाना धर्माणम पृथ्वी यथो कसम, सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहाम, रुवे वधेनोरनपस्पुरन्ति। ये भी अथर्वेद का ही मंत्र है। मंत्र कहता है तो जो मेरा नेशन है, देश है, ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ एक ही टाइप के लोग हो तो देश देश बनता है, सब एक ही भाषा बोलने वाले हो, एक ही टाइप के सोच रखने वाले हो। हजारों साल पहले वेदों की भावना थी कि देश जिसको आप कहते हो, जरूरी नहीं कि वो एक टाइप के लोगों से बसा हुआ हो। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को धारण करने वाला भी एक देश होता है। नाना धर्माणम, और ऐसा देश जहां लोग अलग अलग धर्मों को, अलग अलग विचारों को, अलग अलग कर्तव्यों के साथ जीते हो, पर रहते ऐसे ही हो जैसे एक ही परिवार में रहते हो, जैसे एक ही घर में रहते हो। जब आपके एक ही घर में एक इंजीनियर है, एक टीचर है, एक हाउस मेकर है, एक अकाउंटेंट है, एक ही घर में है, इसका अर्थ नहीं है कि आप अपने आप को अलग करते हो। इसी तरह एक ही जमीन के टुकड़े पर रहने वाले, अलग अलग विचार वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग कपड़े वाले लोग एक साथ रह सकते हैं। जब रहते हैं एक साथ, एक भावना के साथ, एक दूसरे के साथ, उस भाई भातृत्व भाव के साथ, तो वो जमीन का टुकड़ा देश बन जाता है। ऐसे ही देश जब होता है तो वो फिर हमारे लिए उस कामधेनु की तरह होता है जो हमारे लिए हमेशा अमृत की वर्षा कराता रहता है। देवियों सज्जनों, इसलिए ऋग्वेद के अंतिम सूक्त का ये मंत्र बड़ा सुंदर है। तीन मंत्र है। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे समजानाना उपासते। वेद का आदेश है, जो मनुष्यों संगच्छध्वं, साथ सब मिलके चलो, संवदध्वं मिलके बोलो, संवो मनांसि जानतां एक दूसरे के मन को समझा करो, देवा भागम यथा पूर्वे समझानाना, जैसे तुम्हारे पूर्वज लोग एक दूसरे के भाव को समझते थे, इसी तरह तुम भी एक दूसरे की भावनाओं को रिस्पेक्ट करो, समझो, तो तुम आगे बढ़ोगे। अगला मंत्र कहता है, समानो मंत्र समिति समानी, समानम मन सह चित्तमेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्र समाने नवो हविषा जुहोमी। तुम्हारा विचार एक जैसा हो, तुम्हारी असेंबली एक जैसी बने, तुम्हारा मन एक दूसरे से मिलता हुआ हो, तुम जो विचार करो आखिर में, कंक्लूजन में, एक विचार पर सहमत बनाओ और मैं ईश्वर कहते हैं वेद के माध्यम से तुम सबको एक ही प्रकार के आहुति से जोड़ के रखा हूं। ईश्वर ने सबको एक ही प्रकार से बनाया है, बाहर की रूप में कितना भी अंतर दिखे, खून का रंग सबका एक ही होता है, सब हाथ एक जैसे होते हैं, सब पैरों से चलते हैं, सबके अंदर की नस नाड़ियां एक टाइप की होती हैं, सभी नाक से सांस लेते हैं, कान से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। कोई ईश्वर ने सारी व्यवस्थाएं आपके लिए एक टाइप की बना रखी है, इसको समझो और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की कोशिश करो। समानी व आकूति ही समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासती। तो तुम्हारा रेजुलेशन एक टाइप का बने, तुम्हारे हृदय एक जैसा हो, सोच एक जैसा हो, तुम्हारा मन भी एक जैसा हो, जिससे कि तुम सुख से शांति से एक दूसरे के साथ रह सके। देवियों सज्जनों, इसका अर्थ ये नहीं है कि जब आप समान मन वाले बने, समान विचार वाले बने, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक जैसा सोचे, तो हो ही नहीं सकता, एक जैसा खाना खाए, पर एक दूसरे में जो सामंजस्य है, जो हारमोनी है, कि हम अलग अलग होने पर भी, अलग अलग भाषा बोलने पर भी, अलग अलग सोच रखने पर भी, एक पॉइंट पर जब हम सहमति बनाते हैं, जब एग्रीमेंट करते हैं, तभी वो संस्था हो, वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई देश हो, या इवन आपकी कोई फैमिली हो, तभी चलती है जब सब कोई सिंगुलर पॉइंट पर सहमत होते हैं। वैसे विचार अलग अलग हो सकता है, या एक दूसरे के विचार को रेस्पेक्ट करते हुए करते हैं। देश को भी इसी की जरूरत है, हमें अलग अलग टाइप के लोगों की जरूरत है, अलग अलग विचार वालों के लोगों की भी जरूरत होती है, पर आपस में जब सहमति होती है तो देश आगे बढ़ता है। और एक दो छोटी छोटी बातें कह के विराम करेंगे, आगे आपका अभी ध्वजारोहण होगा, झंडा फहराया जाएगा। ऋग्वेद का ही मंत्र है, कहते माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। कोई भी देश के साथ अगर आपकी भावना ना जुड़ी हो, उस जमीन के टुकड़े जहां पर हम रहते हो, अलग अलग भाषा संस्कृति खान पान कपड़े के साथ भी रहते हो, उस ओवरऑल जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, उस राष्ट्र के साथ अगर हमारा इमोशनल कनेक्शन ना हो, तो कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता, जिसको आप पैट्रियोटिज्म के देशभक्ति के। एक भी देश दिखाइए जो प्रॉस्पर हो, समृद्ध है, रिच है, माइटी है, पावरफुल है, पर वहां के लोग देशभक्त नहीं, ऐसा कोई नहीं। यूएसए जैसा देश एक नया देश, 450 मुश्किल से 400 साल का एक देश, यहां का कोई लोकल आदमी नहीं है, बड़े मुश्किल से वो इंडियाना ट्राइबल और अलास्का के कोई ट्राइबल लोग कुछ हुए हों, सब बाहर से आए हुए हैं, कोई 400 साल पहले आया, कोई 300 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 3 साल पहले, सब बाहर से आए, एक जमीन के टुकड़े पर रहे, एक दूसरे से मिले। पर अगर आज ये देश दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध और शक्तिमान देश है, उसके मूल भावना यही है कि वो जो एक्सक्लूसिवनेस है कि मैं, ये मेरा देश है, सबसे अलग है, सबसे श्रेष्ठ है, ये भाव सिर्फ व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाता है, देश को भी बड़ा बनाता है, सिर्फ देश को बड़ा नहीं बनाता है, उस व्यक्ति को भी बड़ा बनाता है। हमारे देश में, भारत में जो कमी रही वही कम्प्लेक्स की, इंफीरियरिटी की। हमारे अंदर ये भाव बहुत कम आ पाया, क्यों नहीं आ पाया, उसका कारण ढूंढने की जरूरत है। ये भी कभी गुलाम था, अमेरिका भी गुलाम था, दुनिया के ज्यादातर देश गुलाम रहे, शायद हम कुछ ज्यादा ही देर तक गुलाम रहे, इसीलिए हमारे अंदर वो भाव सुपीरियरिटी तो बात तो छोड़िए, हम एक नॉर्मल इंसान की तरह हमारा मन नहीं बन पाया, हम हमेशा इंफीरियरिटी में जीने के लिए मजबूर हुए। हमारे पढ़े लिखे इंडियन ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं यूरोपियन और अमेरिकन की कंपेरिजन। हमारी हर चीज को छोटा आंकना, अपनी भाषा को ना बोलना, ना बोलने पर प्राउड फील करना, अपनी कल्चर को बुराई करके प्राउड फील करना, हमारी हर चीज को छोटा आंक के प्राउड फील करना, ये पढ़े लिखे इंडियन लोगों की जो आदत बनी है, शायद इसी का कारण है कि हम बहुत कोशिश करने पर भी हमारा देश वो प्रगति नहीं कर पाता है जो करना चाहिए, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे लीडर्स, हमारे आम जनता के अंदर वो भाव नहीं आ पाता है, ये मैं, मेरा देश का मैं अंग हूँ, मेरा देश दुनिया में श्रेष्ठ है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये भाव ऑनेस्टी के साथ नहीं आ पाता है। पाखंड के साथ तो आता है, हिपोक्रेसी के साथ तो आता है कि मैं बेईमानी भी करूं और सोचूं कि मेरा देश महान हो, ये तो नहीं हो सकता। ईमानदारी के साथ नहीं आ पाता है, शायद इसीलिए हम इतने ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं। और अगर आप कंपेयर करें कि दुनिया के किसी भी देश को, जो भी देश तरक्की किया है, उसमें बहुत सारे कारण है। ये भी एक कारण है कि मैं अपने आप को उस देश का अंग मानूं। और ऋग्वेद का अंतिम एक वाक्य कह के खत्म करते हैं, वयम तुभ्यम बलिहृतस्याम। वो देश का एक सामान्य नागरिक बोलता है ऋग्वेद का मंत्र, देवियों सज्जनों, हजार हजार साल पुराने ऋषियों का वचन है कि हे मातृभूमि, हम तुम्हारे लिए बलि चढ़ने के लिए तैयार हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। ये भाव जब हमारे अंदर आए, बलि चढ़ने का अर्थ नहीं कि आप जब चाहे तब अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाए देश के लिए, कोई मरना कोई अच्छी बात नहीं होती है। असली बात है कि बॉटम लाइन है कि आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, जिस जमीन के टुकड़े के साथ आप अपने आप को अटैच करते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं, उसके साथ, उसके प्रति ऑनेस्टी के साथ जुड़े, अपनी इंडी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि आपके किसी भी कर्मों से, व्यवहार से, भाषा से आपके देश का बदनाम ना हो। आप देश के अंदर हैं या बाहर हैं, वो मैटर नहीं करता। आप कहीं भी हैं, आप उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। देश के अंदर रहने वाले तो अलग बात है, देश से बाहर रहने वालों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के सामने उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ मेरा अपना अपनी पर्सनालिटी नहीं होती है, वो मेरे बैकग्राउंड को भी रिफ्लेक्ट करता है, मैं जहां से आता हूँ, जिस देश को बिलोंग करता हूँ। देवियों सज्जनों, इस नाते जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, जो भारतीय हैं पर भारत के बाहर रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर कोई जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मेरे कहने से पहले भी ज्यादातर जो बाहर रहने वाले लोग वो ज्यादा देश अपने अपने मातृभूमि के प्रति ज्यादा भाव रखते हैं, ज्यादा भक्ति भाव रखते हैं। जब भी मूल देश को जरूरत पड़ी, सबसे पहले देश से बाहर रहने वाले लोगों ने ही आवाज उठाई। देश की आजादी में भी जितने बड़े बड़े लीडर आए वो सब NRI थे, वो साउथ अफ्रीका में रहने वाले हो, ब्रिटेन में रहने वाले हो, फ्रांस में रहने वाले हो, या USA में रहने वाले हो, उन लोगों ने ही लीड किया। हमेशा बाहर रहने वाले लोगों की भी उतनी ही जरूरत होती है जो देश में रहने वाले लोग हैं। देवियों सज्जनों, आज के शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आप अगर USA को अपना अपना देश समझते हैं, या भारत के साथ अभी भी आपका लगाव है, जहां भी है वो मैटर नहीं करता, पर जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं, ईमानदारी के साथ जुड़े, और हमारा अपना चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारी पर्सनालिटी ऐसा हो, हम जिसके साथ भी जुड़े वो हमारे द्वारा गौरवान्वित हो, लज्जित ना हो। इसी के साथ आज के शुभ दिन पर आपको बहुत बहुत अभिनंदन इस रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पर। अभी हम फ्लैग होस्टिंग के लिए बाहर जाएंगे, उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है।